एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ग्रंथसार में आज हम एक बहुत ही प्यारी लेकिन गहरी कहानी पर बात करने वाले हैं। दिखने में बच्चों की किताब, पर इसमें सबक छिपे हैं हम सबके लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एंटवान द सेंट एक्ज्यूपेरी की कालजयी रचना द लिटिल प्रिंस, यानी छोटा राजकुमार। ये किताब न सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, मुझे लगता है हर उम्र का पाठक इससे कुछ न कुछ सीख सकता है।
बिल्कुल, खास तौर पर वो लोग जो जिंदगी की भागदौड़ में थोड़ा थमकर सोचना चाहते हैं।
सही कहा। और इसके लेखक सेंट एक्ज्यूपेरी क्या कमाल की शख्सियत थे। 1900 से 1944 तक फ्रांसीसी लेखक, कवि और हाँ, एक अग्रणी पायलट भी।
उनका पायलट वाला पहलू बहुत अहम है। आसमान से उनका जो इश्क था और जमीन पर उनके अनुभव, जैसे सहारा रेगिस्तान में उड़ना, एंडीज पर्वतों के ऊपर से गुजरना, ये सब उनके लेखन में झलकता है।
हाँ, उनकी दूसरी किताबें भी हैं, जैसे नाइट फ्लाइट या विंड सैंड एंड स्टार्स, उनमें भी ये बात दिखती है।
और सोचिए, ये छोटा राजकुमार लिखी कब गई थी?
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब वो न्यूयॉर्क में थे निर्वासन में, 1940 से 43 के बीच।
हाँ, 1943 में छपी और बस एक साल बाद 1944 में वो एक उड़ान के दौरान लापता हो गए, रहस्यमय ढंग से।
कहीं ना कहीं उस युद्ध की जो व्यर्थता है, अकेलापन है, वो इस कहानी के पीछे महसूस होता है ना?
बिल्कुल, और इसे किसी एक कैटेगरी में रखना भी मुश्किल है। बच्चों की कहानी या बड़ों के लिए दर्शन या रूपक कथा?
शायद इसीलिए ये दुनिया की सबसे ज्यादा अनुवादित किताबों में से एक है।
सब इसमें कुछ ना कुछ पाते हैं।
तो आज हम क्या करने वाले हैं?
हम इस कहानी की परतों को खोलेंगे,
किरदारों के सफर को समझेंगे
और उन संदेशों को पकड़ने की कोशिश करेंगे जो आज भी उतने ही जरूरी लगते हैं।
हाँ, चलिए शुरू करते हैं।
तो कहानी की शुरुआत कथावाचक से होती है। एक पायलट, उसकी दुनिया कैसी है, कहाँ से शुरू होती है ये कहानी? कहानी का दरवाजा खोलता है एक पायलट जो बचपन से ही बड़ों की दुनिया से थोड़ा अलग थलग महसूस करता है। वो याद करता है अपने बचपन की एक बात, एक चित्र बनाया था उसने।
हाँ, वो बुआ वाला चित्र।
वही, एक बुआ कंस्ट्रिक्टर, मतलब एक बड़ा सा सांप जो हाथी को निगल रहा था। सोचिए क्या कल्पना थी।
जबरदस्त।
लेकिन जब उसने बड़ों को दिखाया तो सबने क्या कहा?
अरे, ये तो एक हैट है।
बिल्कुल, किसी ने कोशिश ही नहीं की ये देखने की कि उस हैट के अंदर क्या है। इस बात से वो इतना निराश हुआ कि उसने चित्रकार बनने का सपना ही छोड़ दिया, पायलट बन गया।
ताज्जुब की बात है, कैसे बचपन की मासूमियत और कल्पना को ये तथाकथित समझदार दुनिया कुचल देती है।
हाँ, और वो पायलट बनके भी जैसे उन बड़ों की दुनिया से थोड़ा दूरी रहना चाहता था, जो सिर्फ अंकों और फैक्ट्स में उलझे रहते हैं।
और फिर कहानी आगे बढ़ती है एक बड़े नाटकीय मोड़ के साथ। उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है।
हाँ, कहानी असल में वहीं से रफ्तार पकड़ती है। उसका जहाज सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच क्रैश हो जाता है। सोचे जरा, हजारों मील दूर इंसानी बस्तियों से, रेत ही रेत, पीने का पानी भी बस थोड़ा सा, और वो बिल्कुल अकेला।
उफ, ये तो भयानक स्थिति है, जिंदगी और मौत का सवाल।
एकदम चरम अकेलापन, अस्तित्व का संकट।
और ऐसे ही अकेलेपन में कुछ अजीब होता है, एक मुलाकात।
हाँ बिल्कुल, एक चमत्कार जैसा। अगली सुबह जब वो अपने टूटे जहाज को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, उसे एक पतली सी गंभीर आवाज सुनाई देती है।
छोटा राजकुमार।
हाँ, एक छोटा सा लड़का, सुनहरे बालों वाला, उसके सामने खड़ा है और बड़े आराम से कहता है, प्लीज मुझे एक भेड़ का चित्र बना दो।
कमाल है, रेगिस्तान के बीच में एक बच्चा और भेड़ का चित्र क्यों? पायलट तो हैरान रह गया होगा।
बिल्कुल, वो भौचक्का था। कई बार कोशिश करता है भेड़ बनाने की, पर बन नहीं पाती। आखिर में वो झुंझलाकर एक बक्सा बना देता है और कहता है, तुम्हारी भेड़ इसके अंदर है।
और राजकुमार?
राजकुमार का चेहरा खिल उठता है। वो कहता है, हाँ मुझे ठीक ऐसी ही भेड़ चाहिए थी।
वाह, मतलब वो बक्से के अंदर भेड़ देख सकता था।
एग्जैक्टली, यही पता चल जाता है कि ये बच्चा चीजों को बाहरी आंखों से नहीं, दिल की आंखों से देखता है।
और यहीं से उन दोनों की अनोखी दोस्ती शुरू होती है।
जी,
तो ये रहस्यमयी बच्चा जो बक्से में भेड़ देख लेता है, आखिर ये आया कहां से था? इसकी अपनी दुनिया कैसी थी?
धीरे धीरे बातों में राजकुमार बताता है कि वो एक बहुत बहुत छोटे ग्रह से आया है। इतना छोटा कि शायद खगोल शास्त्री उसे शुद्र ग्रह B612 कहते होंगे, बस एक घर जितना बड़ा।
बस एक घर जितना, तो वहां वो करता क्या था?
वहां उसका जीवन बहुत नियम और जिम्मेदारी वाला था। उसके ग्रह पर 3 ज्वालामुखी थे।
3?
हाँ, 2 चालू, 1 शांत, जिनकी वो रोज सफाई करता था, और एक बहुत जरूरी काम वो रोज करता था,
क्या?
बाओबाब पेड़ों के नन्ने नन्ने अंकुरों को उखाड़ना।
बाओबाब पेड़, वो क्यों, क्या खास बात थी उनमें?
खास ये कि अगर उन्हें बढ़ने दिया जाए तो वो इतने बड़े हो जाते हैं कि उनकी जड़ें पूरे छोटे से ग्रह को फाड़ सकती हैं, उसे नष्ट कर सकती हैं।
अच्छा, तो ये बाओबाब पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक तरह का प्रतीक है, रूपक। शायद हमारी छोटी छोटी बुरी आदतें या बुरे ख्याल या वो मुश्किलें जिन्हें हम नज़रअंदाज करते रहते हैं, और अगर वक्त पर ध्यान ना दें तो वो बढ़कर सब कुछ तबाह कर सकती हैं।
बहुत गहरी बात है, ये रोज का काम, ये जिम्मेदारी।
हाँ, ये हमें सिखाता है कि जिम्मेदारी कितनी जरूरी है, चाहे अपने ग्रह की हो या अपने मन की दुनिया को साफ रखने की।
सही कहा। तो उसके ग्रह पर बस ज्वालामुखी और बाओबाब थे, या कोई और भी था?
हाँ, एक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज थी, एक फूल, एक गुलाब।
गुलाब?
जी, एक बीज कहीं और से आया था। राजकुमार ने बड़े प्यार से, बड़े देखभाल से उसे सींचा। जब वो खिला तो बहुत सुंदर था, अविश्वसनीय रूप से सुंदर। लेकिन
अच्छा,
राजकुमार उसके इस बदलते बर्ताव से, उसकी मांगों से उलझन में पड़ गया। उसे लगा कि वो उसे ठीक से प्यार करना नहीं जानता, उसे समझ नहीं पा रहा। और इसी दुख में, इसी कश्मकश में उसने अपना ग्रह छोड़ने का फैसला कर लिया।
तो ये गुलाब, ये एक जटिल प्रेम का प्रतीक हुआ।
हाँ बिल्कुल, जो सुंदरता भी देता है और दर्द और उलझन भी। और राजकुमार की जो पूरी यात्रा है ना, वो एक तरह से इसी गुलाब को समझने और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को फिर से महसूस करने का सफर है।
तो अपने ग्रह और उस मुश्किल गुलाब को पीछे छोड़कर राजकुमार का सफर कहाँ जाता है, क्या देखता है वो?
अपना घर छोड़ने के बाद राजकुमार पास के 6 और क्षुद्र ग्रहों पर जाता है,
छोटे छोटे ग्रह।
छोटे छोटे ग्रह, और हर ग्रह पर उसे सिर्फ एक ही आदमी मिलता है, और हर मुलाकात वयस्क दुनिया की किसी न किसी बेतुकी बात पर एक कटाक्ष जैसी है।
हाँ, वो बड़े अजीब लोग थे, मुझे याद आ रहा है
ना? पढ़ते हुए हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है।
जैसे वो राजा था एक, जिसके पास प्रजा ही नहीं थी।
बिल्कुल, पहले ग्रह पर वही राजा मिलता है, एक खाली साम्राज्य पर राज करता है, सोचता है सब पर उसका हुक्म चलता है, पर हुक्म भी तभी देता है जब वो पूरा हो सके, मतलब निरर्थक अधिकार का खोखलापन।
और फिर वो अहंकारी व्यक्ति जो बस तारीफ सुनना चाहता था।
हाँ, दूसरे ग्रह पर कोई भी गुजरे बस उसकी तारीफ करे, खोखला अहंकार। तीसरे पर एक शराबी, वो क्यों पीता है, ताकि पीने की शर्म भूल सके, एक कभी न खत्म होने वाला दुखद चक्कर।
उफ, और चौथा वो व्यापारी जो तारे गिनता रहता था।
हाँ, पागलों की तरह तारे गिनता है और कहता है ये सब मेरे हैं, मेरी संपत्ति।
जैसे गिन लेने से कोई चीज अपनी हो जाती है, भौतिकवाद का क्या मजाक उड़ाया।
बिल्कुल, और स्वामित्व के भ्रम पर भी चोट है।
और पांचवा, वो लैंप चलाने वाला, उसकी कहानी भी बड़ी अजीब थी।
हाँ, पांचवा क्या है, सबसे छोटा था। वहां एक लैंप चलाने वाला रहता था, उसे हुक्म मिला था कि हर मिनट लैंप चलाओ और फिर बुझाओ। ग्रह इतनी तेजी से घूमता था कि दिन रात मिनटों में बदल रहे थे।
बाप रे, तो उसे एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती होगी?
बिल्कुल नहीं, वो बेचारा बिना सोचे, बिना सवाल किए बस अपना काम किए जा रहा था, अंधे कर्तव्य पालन का प्रतीक। राजकुमार को उस पर थोड़ी दया भी आई।
और छठा ग्रह,
वो भूगोलवेत्ता वाला?
हाँ,
छठा ग्रह एक भूगोलवेत्ता का था, बड़ी सी किताब लिए बैठा था, दुनिया भर की जानकारी लिख रहा था, नदियां, पहाड़, शहर।
तो इसमें क्या बुराई थी?
बुराई ये थी कि उसने खुद कभी कुछ नहीं देखा था, वो बस दूसरों से सुनकर लिखता था, वास्तविक अनुभव से ज्यादा किताबी ज्ञान को महत्व देता था।
अच्छा, मतलब सिर्फ थ्योरी, कोई प्रैक्टिकल नहीं।
हाँ, और यही भूगोलवेत्ता राजकुमार के प्यारे गुलाब को कहता है एफेमेरल।
एफेमेरम मतलब?
मतलब क्षणभंगुर, जो हमेशा नहीं रहेगा, नश्वर। ये शब्द राजकुमार के दिल में तीर की तरह लगता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसका गुलाब हमेशा नहीं रहेगा, उसे खोने का डर महसूस होता है, बहुत दुख होता है उसे।
तो ये सारी मुलाकातें, ये उसके उस शुरुआती ख्याल को और पक्का कर देती हैं कि बड़े लोग सचमुच बहुत अजीब होते हैं।
हाँ बिल्कुल, वो देखता है कि बड़े लोग आंकड़ों में, नियमों में, दिखावे में, चीजों पर कब्जा करने में इतने डूबे हैं कि जो सच में जरूरी है उसे देख ही नहीं पाते।
और इसी भूगोलवेत्ता की सलाह पर वो पृथ्वी पर आता है, है
हाँ ना? जी हाँ, भूगोलवेत्ता कहता है पृथ्वी पर जाओ, वो एक अच्छी प्रतिष्ठा वाला ग्रह है। और विडंबना देखिए, राजकुमार पृथ्वी पर भी कहाँ उतरता है, रेगिस्तान में।
फिर से रेगिस्तान।
हाँ, और यहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले होती है एक सांप से।
सांप, वो तो खतरनाक होता है।
यहाँ सांप थोड़ा रहस्यमयी है, वो पहेलियों में बात करता है, इंसानों के अकेलेपन की बात करता है, और इशारा करता है कि उसमें ऐसी शक्ति है कि वो जिसे छू ले उसे वापस वहीं भेज सकता है जहां से वो आया था, मतलब मिट्टी में।
तो सांप यहां मृत्यु का प्रतीक है या वापसी का?
शायद दोनों का, मृत्यु, भाग्य, अपने मूल में वापसी, कई मतलब निकाले जा सकते हैं।
पृथ्वी पर उसका सफर फिर और आगे बढ़ता है, और एक और अहम मोड़ आता है जब वो गुलाबों का बगीचा देखता है।
ओ हाँ, वो क्षण तो दिल तोड़ देने वाला है राजकुमार के लिए। रेगिस्तान से निकलकर वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां हजारों हजारों गुलाब खिले हैं।
हजारों?
हाँ, और वो हैरान रह जाता है, दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अपने गुलाब ने तो कहा था कि वो पूरी कायनात में अपनी तरह का अकेला है।
हाँ, ये तो धोखा हुआ उसके साथ।
उसे ऐसा ही लगता है, उसे लगता है मेरा गुलाब तो बाकी हजारों जैसा ही है, साधारण। मेरा प्यार तो किसी आम चीज के लिए था। वो जमीन पर लेटकर रोने लगता है, उसे लगता है मेरा खजाना लुट गया। मेरे पास तो बस एक आम सा गुलाब और तीन छोटे ज्वालामुखी हैं।
ये तो मोहभंग की इंतहा है, पर कहते हैं ना, रात के बाद ही सुबह होती है। इसी निराशा में उसकी मुलाकात लोमड़ी से होती है।
हाँ, लोमड़ी का आना इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। वो एक गुरु की तरह आती है। जब राजकुमार उदास बैठा रो रहा होता है, लोमड़ी वहां आती है। राजकुमार उससे खेलना चाहता है।
पर लोमड़ी मना कर देती है।
हाँ, वो कहती है मैं नहीं खेल सकती क्योंकि मुझे पालतू नहीं बनाया गया है।
पालतू? टेमिंग, इसका क्या मतलब है?
राजकुमार भी यही पूछता है। तब लोमड़ी उसे समझाती है, पालतू बनाना मतलब रिश्ता बनाना, टू एस्टैब्लिश टाइज, एप्रिवॉइजे। ये एक धीमी प्रक्रिया है, इसमें सब्र चाहिए, रस्में चाहिए, एक दूसरे के लिए वक्त निकालना पड़ता है। जब आप किसी को पालतू बनाते हैं तो वो आपके लिए दुनिया में सबसे अनोखा बन जाता है, और आप उसके लिए।
वाह।
वो कहती है, अभी तो मेरे लिए हजारों लड़कों जैसे हो और मैं तुम्हारे लिए हजारों लोमड़ियों जैसी, पर अगर तुम मुझे पालतू बना लोगे तो हम एक दूसरे के लिए जरूरी हो जाएंगे। तुम मेरे लिए दुनिया में अकेले होगे और मैं तुम्हारे लिए दुनिया में अकेली।
ये पालतू बनाने की बात, ये तो बहुत खूबसूरत है। ये सिर्फ जानवरों पर नहीं, इंसानी रिश्तों पर भी लागू होती है।
बिल्कुल, ये रिश्तों की बुनियाद है। और इसी प्रक्रिया के बाद लोमड़ी राजकुमार को वो दो रहस्य बताती है जो इस किताब का दिल है।
क्या है वो रहस्य?
पहला, असल चीजें आंखों से नहीं दिल से ही अच्छी तरह देखी जा सकती हैं। जो सबसे जरूरी है वो आंखों से ओझल रहता है।
हाँ।
और दूसरा, तुमने अपने गुलाब पर जो वक्त बिताया है उसी ने तुम्हारे गुलाब को इतना जरूरी बना दिया है।
इट इज द टाइम यू हैव वेस्टेड फॉर योर रोज दैट मेक्स योर रोज सो इम्पोर्टेंट।
और साथ में ये चेतावनी भी, तुम उसके लिए हमेशा जिम्मेदार हो जिसे तुमने पालतू बनाया है, तुम अपने गुलाम के लिए जिम्मेदार हो।
वाह, इन बातों ने तो राजकुमार की दुनिया ही बदल दी होगी।
हाँ, जैसे उसकी आंखों से पर्दा हट गया, उसे समझ आ गया कि उसका गुलाम उन हजारों गुलाबों जैसा होकर भी अनोखा क्यों है।
क्यों?
क्योंकि उसने उसे पालतू बनाया है, उसने उसे सींचा है, उसकी देखभाल की है, उसकी शिकायतें सुनी है, पर्दे से ढका है, उसके लिए कीड़े मारे हैं, उसने उस पर वक्त लगाया है।
उनके बीच एक रिश्ता है, एक बंधन,
बिल्कुल,
जो उन बाकी गुलाबों के साथ नहीं है। अब वो अपने गुलाम की कीमत समझता है और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है। लोमड़ी उसे प्यार का असली मतलब सिखा देती है। कमाल है। और उधर कथावाचक, वो पायलट, उसकी हालत बिगड़ रही थी, पानी खत्म हो रहा था।
हाँ, कहानी में आठवां दिन आ गया है, पायलट का पानी बिल्कुल खत्म, वो मौत के करीब है। और अब देखिए, भूमिकाएं बदल जाती हैं। पहले पायलट राजकुमार को सिखा रहा था, अब राजकुमार पायलट को राह दिखाता है।
कैसे?
वो पायलट को कुएं की तलाश में ले जाता है। उनकी वो प्यास अब सिर्फ जिस्मानी नहीं रहती, वो एक रूहानी तलाश बन जाती है, जीवन के अर्थ की तलाश।
और उन्हें कुआं मिल जाता है।
हाँ, एक पुराना गांव जैसा कुआं,
और जब वो उसका मीठा पानी पीते हैं तो पायलट को लगता है ये पानी नहीं संगीत है, दिल के लिए तोहफा।
ये उनकी दोस्ती की गहराई दिखाता है।
हाँ, उनका साझा अनुभव, उनका बंधन।
लेकिन राजकुमार के जाने का वक्त भी आ गया था।
हाँ, उसे पृथ्वी पर आए एक साल हो गया था, ठीक उसी जगह के पास जहाँ वो उतरा था। वो जानता था कि उसे अपने गुलाब के पास वापस जाना है, वो जिम्मेदार है उसके लिए।
और उसने वापसी का इंतजाम भी कर लिया था उसी सांप के साथ।
बहुत दुखी है। राजकुमार उसे समझाता है कि उसका शरीर बहुत भारी है, वो इसे साथ नहीं ले जा सकता, ये तो बस एक पुराना खोल है, इसे यहीं छोड़ना होगा। वो पायलट से कहता है कि जब सांप उसे काटेगा तो वो देखे नहीं, क्योंकि वो मौत जैसा लगेगा पर होगा नहीं, वो बस अपना खोल छोड़ रहा होगा।
शरीर सिर्फ एक खोल है, ये भी कितनी बड़ी बात है। और वो पायलट को एक तोहफा भी देकर जाता है।
हाँ, एक यादगार तोहफा। वो कहता है, जब तुम रात को आसमान देखोगे तो चूंकि मैं किसी एक तारे पर रह रहा हूंगा, किसी एक पर हंस रहा हूंगा, तो तुम्हें लगेगा जैसे सारे तारे हंस रहे हैं।
हंसते हुए तारे?
हाँ, तुम्हारे पास वो तारे होंगे जो हंसना जानते हैं, एक ऐसा तोहफा जो हमेशा उसके साथ रहेगा। पायलट उस रात राजकुमार को चुपचाप गिरते हुए दिखता है। अगली सुबह उसका शरीर वहां नहीं होता।
वो चला गया।
हाँ, शायद अपने ग्रह पर, अपने गुलाब के पास लौट गया। कहानी पायलट की एक अपील के साथ खत्म होती है।
क्या अपील?
कि अगर कोई उस रेगिस्तान से गुजरे और उसे एक सुनहरे बालों वाला छोटा लड़का मिले जो सवालों का जवाब न दे, तो मेहरबानी करके उसे खबर भेज दे कि छोटा राजकुमार वापस आ गया है।
उफ, क्या कहानी है सच में। कितनी सीधी सादी भाषा में कितनी गहरी बातें। अगर इसके मुख्य विषयों को देखें तो सबसे पहले तो वही बड़ों की दुनिया पर कटाक्ष।
हाँ, उनका अंकों, सत्ता, दिखावे के पीछे भागना और जीवन के असली आश्चर्य को भूल जाना।
बिल्कुल। और उसके सामने है दिल से देखने का फलसफा।
लोमड़ी वाली बात
जी,
कि जरूरी चीजें अदृश्य हैं, प्यार, दोस्ती, वफादारी, सुंदरता, इन्हें महसूस करना पड़ता है, आंखों से नहीं, दिल से।
और प्रेम और जिम्मेदारी, क्या गहरा रिश्ता है दोनों में।
हाँ, प्रेम सिर्फ भावना नहीं, एक जिम्मेदारी है। जिसे तुम पालतू बनाते हो उसके लिए तुम हमेशा जिम्मेदार हो। ये पंक्ति तो रिश्तों का सार है।
राजकुमार का अपने गुलाब के लिए जिम्मेदार महसूस करना ही उसके प्यार को गहरा बनाता है।
कहानी हमें नुकसान और अलगाव को भी स्वीकारना सिखाती है। राजकुमार का जाना दुखद है, पर रिश्ते खत्म नहीं होते।
तारों में उसकी हंसी।
हाँ, वही। शायद खोने का दर्द ही उस प्यार की गहराई का सबूत है। और आखिर में ये कहानी जीवन में अर्थ की तलाश है,
जो सत्ता या संपत्ति में नहीं
बल्कि दूसरों के साथ गहरे सच्चे रिश्ते बनाने में मिलता है।
एक और बात जो मुझे लगता है अहम है, वो है पर्यावरण के प्रति वो संवेदनशीलता।
हाँ, राजकुमार का अपने ग्रह की देखभाल करना, बाओबाब हटाना, ज्वालामुखी साफ करना,
यह हमें हमारी अपनी जिम्मेदारी याद दिलाता है।
जी,
अपने आसपास की दुनिया के प्रति।
और लिखने का अंदाज, सेंट एक्ज्यूपेरी का गद्य कितना सरल है, बच्चों जैसा, पर उसमें गहराई और कविता है।
पूरी कहानी एक रूपक है, हर चीज का मतलब है, रेगिस्तान, पानी, तारे, फूल।
और वो चित्र लेखक के खुद के बनाए हुए, वो कहानी का हिस्सा है, शब्दों से ज्यादा कह जाते हैं कई बार।
हाँ, और कथावाचक की मैं शैली कहानी को बहुत निजी बना देती है।
बिल्कुल।
सच में ये कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि जिंदगी की सबसे अनमोल चीजें अक्सर आंखों से नहीं दिखती,
उन्हें महसूस करने के लिए दिल की नजर चाहिए।
और ये भी कि असली जुड़ाव और जिम्मेदारी निभाने में ही जीवन का सच्चा अर्थ है, भले ही उसमें हमें अपना कीमती वक्त बर्बाद क्यों ना करना पड़े। ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।